एक सूचना देनी थी। सूचना ये है कि जब आप डाइनिंग हॉल में भोजन लेते हैं तो आप सबको कोई किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज वाले हैं, कोई हार्ट है, कोई कैसा भी है, तो अगर ये जैसे खीर वगैरह मिलती है तो खीर विदाउट शुगर भी होती है, भोजन जो है विदाउट चिली भी मिल सकती है, विदाउट सॉल्ट भी होता है। तो आप सबको ऐसा ध्यान में रहे, जब लेते हैं किसी को तकलीफ है विदाउट शुगर चाहिए तो भी उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। ओके, स्वागत है आपका। राजकुमार, राजकुमारी राजकोट के आए हैं, ज्वाला जलाने जलवा दिखाने राजयोग के लाए हैं। स्वागत करते आपका मधुबन वाले, स्वागत करते बाबा मधुबन वाले।
कुंवर राजकुमारी राजकोट के आए हैं, ज्वाला जलाने जलवा दिखाने राजयोग के लाए हैं। राजकुमार राजकुमारी राजकोट के आए हैं, ज्वाला जलाने जलवा दिखाने राजयोग के लाए हैं। स्वागत करते आपका मधुबन वाले, स्वागत करते बाबा मधुबन वाले। पदम है भाग्यवान मधुबन में आए, तपो भूमि पर तप करने का अवसर है पाए। पदम पदम है भाग्यवान मधुबन में आए, तपो भूमि पर तप करने का अवसर है पाए। भट्टी तो बहाना है बाबा में खो जाना है। बंधन आजादी और दादी जी का मां, पांडव भवन में चारु धाम में आकर करे निवास। बारिश के मौसम में बाबा के वारिस आए, फरिश्ता बनने की खाली ख्वाहिश है लाए। फरिश्ते दिखते हैं राजकुमार राजकुमारी राजकोट के आए हैं, ज्वाला जलाने जलवा दिखाने राजयोग के लाए हैं। स्वागत करते आपका मधुबन वाले, स्वागत करते आप वाले स्वागत करते आपका मधुबन वाले स्वागत करते बाबा मधुबन वाले स्वागत करते बाबा मधुबन वाले स्वागत करते बाबा मधुबन वाले
मधुबन वाले। बहुत सुंदर, सब मधुबन वालों की तरफ से और मधुबन वाले बाबा की तरफ से ना आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, बार बार स्वागत है। और अभी हम सबके बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जी उपस्थित हैं। आपका भी दीदी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। इस स्वागत की श्रृंखला में देखो आप कितने सौभाग्यशाली कहूं कि पद्मा पद्म भाग्यशाली कहूं कि आपके लिए विशेष शशि बहन जी आपके स्वागत के लिए यहां आई हैं। तो पहले हम आपका स्वागत करते हैं। एक हाथ की ताली आज केवल बजा रहे हैं, कल से नहीं बजाएंगे, कल से नहीं। वैसे बजा रहे थे एक ही हाथ की, लेकिन कल से नहीं बजाएंगे। आज जरा खुशी का मौका आ गया ना, इसलिए बस इसके बाद से ही मौन तपस्या भक्ति है, मौन है, इसलिए खुशी इजहार करने में भी आवाज नहीं है, है ना। तो हम मधुर वाणी ग्रुप का भी थैंक्स करते हैं कि इतने प्यार से उन्होंने आपके लिए शब्दों द्वारा गीत संगीत के द्वारा स्वागत किया। और आपको ज्ञात हो कि जैसे मैंने कहा शशि अपना सतीश भाई के लिए कि वो लिरिसिस्ट हैं, ऐसे ही हमारी आदरणीय दीदी शशि बहन जी भी लिरिसिस्ट हैं। आप भी लिखते हैं, पता है आपको? पता है? नहीं पता ना? बहुत सारी कैसेट्स, मैं समझती हूँ 7-8 कैसेट्स हैं, 10 कैसेट्स हैं, 10 कैसेट्स हैं जिनके गीत आपने लिखे हैं ना? जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे तो वंडर ही लगा था कि शशि बहन भी लिखते हैं गीत, और बहुत सुंदर लिखते हैं। आप भी बाल्यकाल से करनाल आपने सुना होगा, हरियाणा में ये आती है जगह, करनाल से आप हैं जहाँ से आपने बाबा का ये ज्ञान लिया। 10 वर्ष की आयु में आपको बाबा का ज्ञान मिला और 21 वर्ष की आयु में आपने भी अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपने भी भारत के अनेक स्थानों पर जाकर के बाबा की सेवाएं शुरुआत में दी। जैसे बाबा, मैंने पहले ही कहा कि कुमारी माना सेवा केंद्र, तो बाबा सेवा केंद्र पर ही भेजते थे, लेकिन फिर 1974 से आप यहाँ पांडव भवन में स्थायी रूप से समर्पित होकर अपनी सेवाएं देने लगे ना? और यहाँ का सारा जो ऑफिस का विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य और जो ऑफिस की रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, वो ऑफिस का जो काम होता है वो भी कोई बहुत कम काम नहीं होता है, सारा ही देखना पड़ता है हर प्रकार से। उसमें बड़ों से भी कनेक्शन और आने वालों से भी कनेक्शन रहता है, एक वो तालमेल बिछाना होता है। तो तब से लेकर के अभी तक भी सारा ही वो कारोबार आप देखते आ रहे हैं और बहुत ही कुशलता पूर्वक देखते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारे विदेश के भाई बहने 1970-71 से वो भाई बहने हमारे, चाहे वो बीके भाई बहने हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस में आने वाले डेलीगेट्स हो, आपको तो पता ही होगा सारा वर्ष कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के हमारे चलते हैं। तो उनकी हॉस्पिटैलिटी में, उनकी एकोमोडेशन में आप ही व्यस्त रहते हैं और सबको संतुष्ट करना, और विशेषकर बाबा का जब ग्रुप होता है तो बाबा के ग्रुप में सारा सिटिंग अरेंजमेंट, स्पेशली जो बड़े भाई बहन हमारे बैठते हैं उनका सारा सिटिंग अरेंजमेंट, उनको भी व्यवस्थित सबको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको स्थान देना, तो बहुत मेहनत लगती है। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं जब वो मेहनत करते हैं उसके लिए, अपना दिन खाना छोड़ करके और दिन में क्लास पूरा होने के बाद सब लोग उस समय शायद रेस्ट में होते होंगे और आप उस समय हॉल में आकर के सारी बैठने की व्यवस्था करते हैं जिससे सबको संतुष्टि मिलती है, तो एक बहुत बड़ी दुआएं आप अपने खाते में मैं समझती हूँ जमा करते हैं। उसके अलावा यहाँ मधुबन में तो आप शॉर्ट ही बोल रही हूँ परिचय दे दूं, मधुबन में मैंने जैसे जुलू बहन के लिए कहा सब तरफ आपकी भी सेवाएं चलती हैं और विशेषकर अभी आप स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में भी अपनी मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दी हैं। शशि बहन जी से निवेदन करती हूँ, वो स्वागत करेंगे आप सबका शब्दों द्वारा और अपने विचार भट्टी के निमित्त शेयर करेंगे। एक हाथ की ताली से आप जरूर वेलकम करेंगे।
ओम शांति। सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि जब हम बाबा और बाबा के बच्चों से मिलते हैं और अपनी सीनियर बहनों से, जैसे राधा बहन है राजकोट की, भारती बहन और ये अपनी सब पुरानी बहनें हैं, इनको देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा प्यार है, स्नेह है और वो भावना और इनसे जो हमें प्राप्ति होती है सीखने की, वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने हम बच्चों को यही बताया है कि हर ब्राह्मण परिवार के अंदर अनेक, हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर अनेक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को देखते देखते वो विशेषताएं स्वतः ही हमारे अंदर आती हैं और हम पूरा ही परिवार बाबा की विशेषताओं से भरपूर हो जाते हैं। ये है हम सबसे बड़ा परिचय, ब्राह्मण परिवार से मिलना, बहनों से मिलना और उनके द्वारा सीखना और उनके साथ मिलना। ठीक है ना राधा बहन, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम भी इनको बाल्यकाल से देखती आ रही हैं, बचपन से आती रही हैं, बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट और कई बातों के अंदर कई कलाएं हैं। और साथ साथ भारती बहन राजकोट की, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा दादियों की पालना ली हुई, सर्व दादियों दीदियों की पालना, पुरानी पुरानी दादियों के अंग संग रह करके बाप दादा की प्रेरणाओं को पूर्ण करते हुए राजकोट में इतनी सेवाओं को बढ़ाया है, इतनी सेवाओं को बढ़ाया है। हर बार हम उनके प्रोग्राम्स भी देखते रहते हैं, क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं होती रहती हैं। तो आप सभी कितने न सौभाग्यशाली हो जिनको ऐसी दीदी मिले। राजकोट की भारती बहन, लौकिक बहन सरला दीदी, वो भी वहाँ आती रहती हैं और भी अन्य सीनियर बहनें वहाँ पर आती रहती हैं। और मधुबन में आकर के भट्टी करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आज भी बाबा ने कहा तुम सब हो राजऋषि। तो राजऋषि कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, एकांत में जाते हैं, शुद्ध वातावरण के स्थान पर जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां कुछ प्राप्ति हो। तो मधुबन जैसा स्थान और कहीं स्थान नहीं। चाहे आप गुजरात के कितने भी रिट्रीट सेंटर पर भट्टी करते हैं, बीच बीच में पहले अलग अलग स्थानों पर जाकर के भट्टी करते थे और आपको भट्टी कराने वाली बहनें भी वहां पर बहुत सीनियर मिलती रहती हैं, परंतु यहां मधुबन में आकर के भट्टी करने से क्या क्या फायदा होता है? एक है, इस भट्टी में पहला हमारा लक्ष्य क्या है? हम हैं ऋषि। ऋषि की भावना, ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषि एक ही संकल्प में होता है, कि मुझे तपस्या करनी। और हम यहाँ पर इसी लक्ष्य के लिए आए हैं कि तपस्या करने के लिए, और तपस्या के साथ साथ अपने पुराने संकल्पों को स्वाहा करने के लिए, और साथ साथ अपने जीवन के अंदर बाबा के साथ मिलन मनाते हुए अनेक अनुभव करने के लिए। जब हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं तो अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, और गुजरात वालों को तो बाबा इतना प्यार से याद करता है। गुजरात को बाबा क्या कहते थे, ये मधुबन का कमरा। हमें याद आता है दादी प्रकाशमणि की बात, जब कोई नई सेवा होती थी तो कोई भी कार्यक्रम होता था, दादी कहती थी सोचो नहीं, गुजरात बैठा है, सरला को फोन करो, सारा गुजरात आ जाए। चाहे वो मेला हो, चाहे वो प्रदर्शनी हो, जो भी विशाल कार्य, शुरू में कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद मेले हुए, कई प्रकार के प्रोग्राम मधुबन में हुए, तो आप सबके ऊपर बाबा का और दादियों का कितना नाज है। जब इतना नाज है और बाबा ने आप सबको यहाँ पर बुलाया है, तो एक बात का ध्यान रखना है, ऋषि बन के बैठना। तो ऋषि जब बैठता है वो क्या करता है, अपने ध्यान में मगन। वो ये नहीं देखता कि इधर कौन आया, इधर कौन आया। तो ऋषि मीन्स मैं और मेरा बाबा। एक तो ये लक्ष्य रखना है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि अर्थात अपने सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले, अर्थात अपनी सर्व कर्म इंद्रियों के विजेता। वैसे तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो कर्म इंद्रियों में विजयी बन ही जाते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में रहते हैं उस समय ब्राह्मण परिवार से मिले बिना नहीं रहते। अब भट्टी करने आएंगे, सारे भाई बहने कोई कहां से आएगा। भट्टी के बाद जब क्लास पूरा होगी फिर समाचार लेन देन शुरू कर देंगे, अच्छा आपके परिवार में क्या है, आपके सेंटर पर कैसे चल रहा है, आपका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। तो इस बात का भी इस भट्टी में क्या करना है, स्वाहा। अपनी तपस्या, अपने संकल्पों का राजा। और तीसरी बात हमें क्या देखनी है, बाबा ने कहा है ये मेरे तख्त नशीन बच्चे। यहां भी तख्त है, भविष्य में भी तख्त है। तो तख्त नशीन हम कैसे बन सकते हैं, वो भट्टी में करने का मौका सहज रीति से। भट्टी में हमको सबसे बड़ा मौका मिलता है कि बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठ जाओ। नहीं तो क्या होता है, कई नए नए भाई बहने आते हैं, अभी तो नीचे रहने का मौका मिलता है, मधुबन में आते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, यात्रा किया जल्दी जल्दी यात्रा किया दौड़ना शुरू करते हैं, टाइम हो गया चलो चलो बस खड़ी है, ऐसे करते हैं ना। अभी यहाँ पर दिल तख्त नशीन बनने के लिए सबसे पहली बात होगी हर प्रकार की कंप्लेंट को स्वाहा। कौन सी कंप्लेंट करते हैं ब्राह्मण, हमने साकार बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा, हमने दीदी को नहीं देखा, हम देरी से क्यों आए, आप सब तो इतने लक्की हैं, हम तो देरी से आए। ये बाबा से रुझान करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बहनों से करते हैं, मन ही मन विचार करते रहते हैं। लेकिन इस भट्टी में मधुबन में आना, बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं यहाँ खड़ा हूँ। बाबा कहते आओ बच्चे मेरी गोदी में आ जाओ। बाबा बाहें पसार के खड़े हैं, कहते आओ बच्चे। और मधुबन में आकर के भट्टी करना, ऐसे अनुभव होंगे आपको कि साकार बाबा आपके सामने। जब आप चारों धाम की यात्रा करेंगे ना, तो उसमें एक विशेष बात बताती हूँ कि जब बाबा हिस्ट्री हॉल में बच्चों को दृष्टि देते थे, योग कराते थे, योग कराते कराते बाबा बीच में खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के सबको दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि देते थे सब बच्चे उड़ गए। बाबा और मैं, कोई बच्चा ये नहीं देखता था कि मेरे पास कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है। बाबा भी देखता था कि मेरा हर बच्चा लाडला। और फिर मुरली चलाते चलाते बाबा लास्ट वाले बच्चे को भी कहते थे, ये मेरा सिक्की लदा बच्चा। तो इस भट्टी के अंदर आप सबको ऐसे अनुभव होगा, ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि साकार बाबा को नहीं देखा। साकार बाबा की धरनी पर रहना, वहां पर कदम रखना, ये बाबा का साथ। बाबा आपके सामने आपको दृष्टि दे रहे होंगे, अगर पीछे मुड़ के देखा, साइन में देखा, तो बाबा दूसरे को देखने लग जाएंगे। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं और मेरा बाबा। और दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने कहा, बाबा को सदा सामने रखो। और दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते हैं, पहले बाबा कहते थे औरों को आप समान बनाओ, और अभी बाबा कहते हैं औरों को आप समान बनाओ, खुद भी बाप आप समान नहीं, सब खुद भी बाप समान बनो, औरों को भी बाप समान बनाओ। तो गुजरात वाले तो बाप समान बनने में होशियार है ना, किस बात में? रास करने। बाबा गुजरात को रास के लिए बहुत याद करते हैं, कहते हैं रास करने में इतने होशियार हैं, स्थूल रास तो नाम लेते ही यहां नाचना शुरू कर देंगे, है ना। कहने की देर है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक नहीं भी चल सकते होंगे, बहुत प्यार से करते, उनका स्टाइल देखने का होता है। लेकिन गुजरात वालों को, आप सबको, राजकोट वालों को बाबा ने एक और मौका दिया है, इस भट्टी के अंदर बाबा के साथ संस्कारों को मिलाने। वो बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बाबा ने यहां तपस्या की, और ये मधुबन का कण कण बाबा की तपस्या की याद दिलाता है। मधुबन धरनी ऐसी है, हम रहते हैं, बाबा के बच्चे आते हैं, बच्चे लाडले होते हैं, रहा इधर बैठा, बाबा से मिला, बाबा कहते घर में बच्चे आए। लेकिन हम आपको कितनी बातें सुनाएं कि जब बाहर वाले आते हैं, जो ना बाबा को जानते हैं ना ज्ञान को जानते हैं, कई सन्यासी भी कई बार आए हैं, बस जैसे वो एंटर करते हैं पांडव भवन के आंगन में, एंटर करते ही उनको लगता रही यहाँ कोई एक शांति की लहर आ रही, तपस्या की किरणें आ रही हैं, वरदानों ऊपर से बरस रहे हैं। ऐसे अनेकों के अनुभव हैं, क्योंकि हम शुरू से रहते कई आकर के अपने अपने अनुभव सुनाते। एक नया व्यक्ति आकर के इतना अनुभव करता है, आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि भट्टी के अंदर बाबा ने आपके ऊपर कैसे रिमझिम वरदानों की कर दी। स्थूल बरसात तो हुई, लेकिन वरदानों की बाबा कैसे बच्चों का श्रृंगार कर देते हैं, बाबा कैसे बच्चों को उड़ाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे हैं, पूरे क्लब के अंदर एक ही बार मिलते हैं। बाबा ने ये भी कहा, मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों के सिवाय बाहर वालों से नहीं मिलता हूँ। मेरा हर बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है या अमीर है या इंटेलिजेंट है, सिंपल है, लेकिन मेरा हर बच्चा VVIP। बाबा इतना बच्चों को ऊंचा चढ़ाते हैं, बाबा अपने से भी ऊंचा ले जाते हैं। बाबा कहते ये मेरे नैनों के सितारे हैं, बाबा कहते जहान के नूर हैं, बाबा कहते ये फरिश्ते हैं। इतने सारे टाइटल्स बाबा बच्चों को देते हैं। जो कुछ भी बाबा ने दिया है उसका अनुभव कर, जब वो अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा खुशी के झूले में झूलेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा हमारा हाथ पकड़ करके हमको रास करा। बाबा की बात सुनाए, जब बाबा के कमरे में जाते हैं तो हमें याद आता है कि बाबा कैसे बच्चों से मिलते थे। बाबा के सामने बैठे हैं बच्चे, और बाबा बैठे हैं, बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे, कोई बाहर खड़ा होगा बाबा कहे आओ आओ बच्चे बैठे, बाबा कहते मुंह खोलो, मुंह में सीधा टोली, इतना प्यार करते। फिर अभी बाबा की झोंपड़ी की तरफ जाएंगे, बाहर झूला देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, झूले पे बैठे झूले पे बैठे। आप कितने बैठ सकेंगे झूले पे, एक या दो तीन, सारे तो नहीं बैठ सकेंगे ना, तीन बीच में बैठ जाएंगे, दो पीछे झुलाने वाले हो जाएं। लेकिन भट्टी में क्या करना है, आप सबको बाबा के दिल तख्त पे झूला झूला, जितना झूला झूलो। गुजरात में जाओ हर घर में झूला, शाम होती सारे झूले पे बैठ जाते हैं, बात भी करेंगे वहाँ झूले पे, कारोबार भी करेंगे झूले पे, जिधर देखो झूले, झूले पे बैठे खा रहे हैं, झूले पे बैठे बातें कर रहे हैं। वहाँ तो आप सभी अनुभवी हो, और यहाँ पर करके देखना है, ठीक है ना, देखेंगे कैसे आप करते हो। आप नहीं करोगे तो बाबा आपका क्या करेगा, बुद्धि को खींचेगा, ये क्या किया, झूला झूलने वाले और झूला दिन भर झूलते ही रहते, जब टाइम मिलेगा झूले पे बैठ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा साधन बाबा ने हमको दिया है, जब टाइम मिले बाबा के दिल तख्त पर बैठ, और बाबा के दिल तख्त पर बैठ करके ऐसा अनुभव होता है कि हम एक राजा हैं, ऋषि हैं, और ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम सारे विश्व के अंदर सारी प्रजा को, प्रजा तो क्या, प्रकृति, मनुष्य, साइंस वाले, सारे विश्व की आत्माओं को हम साकाश दे रहे। आपको मालूम है आप सबको पैदा किसने किया, मालूम है किसने पैदा, भारती दीदी ने पैदा किया या किसी और ने पैदा किया, आपको बताओ, साकार बाबा ने वहां साकाश भेजा है। साकार बाबा यहां पर जब योग करते थे, योग करते करते बाबा विश्व के अंदर साकाश भेजते। बाबा कहते थे विश्व में कोने कोने में सेंटर खुलेंगे, विश्व के कोने कोने में ज्योत जगेगी। अरे भारत में सेंटर ही नहीं खुले, विश्व में कैसे खुल जाएंगे। और बाबा क्या पूरे भारत के अंदर साकाश देते। तो ये बाबा ने ये जो साकाश दिया है, वो साकाश के बीज वहां आपकी धरनी पर पड़े। फिर बाबा ने इन बहनों को भेजा, इन बीजों को स्नेह का पानी दो, इनको ज्ञान की खाद दो। तो जिससे आपका इतना बड़ा हुआ है, आपको इतनी बड़ी प्राप्ति हुई है, आप सबको पैदा करने वाले कौन है, बोलो अभी जोर से बोलो, साकार बाबा, प्यार से, है ना, साकार बाबा हमारे, उन्होंने ही तो हमको दिया है। बाबा ने तो ये सब हैंड तैयार किए ना, बाबा ने तो आप सबको किया है। तो इसलिए आज के दिन साकार बाबा वतन से आप सबको देख करके गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और साकार बाबा के साथ साथ हमारी प्यारी मम्मा, जून में आपने मम्मा का महीना मनाया, फिर उसके साथ जुलाई में प्यारी प्यारी दीदी मनमोहिनी जी का महीना मनाया, और अभी तो आप दादी प्रकाशमणि जी के महीना मना रहे हैं। जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को देखा वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने एक मिनट, जिन्होंने दीदी मनमोहिनी को देखा है, थोड़े से, और बहुत एक आध दो होंगे जिन्होंने बाबा और या मम्मा को देखा हो, एक से किधर लाडला है, वो तो दिल्ली के हैं। अच्छा, है साकार बाबा मम्मा को देखा, ये दिल्ली से है, इनका है, हाँ अरुण भाई है। अच्छा, तो देखो आप सबको हर समय बाबा स्थूल सूक्ष्म कितनी पालना करते हैं। साकार बाबा ऐसे बच्चों की और सब मम्मा दादियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाबा मम्मा को इतना प्यार देते थे और मम्मा की रिस्पेक्ट करते थे। जब 24 जून आता है तो उस समय बाबा यहाँ पर अंगूर की बेल थी, बाबा अंगूर वो निकलवा करके सब जहाँ जहाँ सेंटर्स थे वहाँ पर भेजते थे। बाबा चार ग्रुप बना देते थे, एक ग्रुप दिल्ली की तरफ जाएगा, फिर पंजाब की तरफ जाएगा, एक ग्रुप महाराष्ट्र की तरफ जाएगा, एक ग्रुप गुजरात की तरफ जाएगा। तो बाबा कहते थे कि बाबा के शुभ हाथों से, हस्त कमल से ये पौधा लगा है, प्यारी प्यारी मम्मा की स्नेह भावना भरी हुई है, जब बच्चों के पास पहुंचती हैं तो वो कितना उनको अनुभव कराती। तो इसलिए मधुबन में प्यारे बाबा, दादियां आज सब वतन से आप सबको देख रहे हैं, और ये समाचार आपका भट्टी का पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में फैला हुआ है कि आज मधुबन में भट्टी का शुरुआत हुआ है, राजकोट का ग्रुप आया है, और सबको पता है, और सबके पास आपके संकल्प पहुंचे हुए। तो आज के दिन वतन से बाबा के साथ सब एडवांस पार्टी की दादियां, सीनियर्स, और वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, और साथ साथ पूरे विश्व से भाई बहने भी आपके साथ यहाँ पहुंचे हुए, उनको भी खुशी है। उनको लगता है जब यहाँ भट्टी होती है ना, तो उनको लगता है हमारे पास वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन देना, साकाश देना बाबा ने तो किया, इस भट्टी में आपको पहला साकाश देना है अपने आप को। कैसे देंगे? हर प्रकार के संकल्प स्वा, ये नहीं कहना बाबा मेरे पति की बुद्धि को टच करो, मेरे बच्चों का ये करो, मेरा बिजनेस करो, ये नहीं। मैं और मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के साथ मेरे सर संबंध है, मैं बाबा की गोदी में बैठा हूँ, बाबा मेरा हाथ पकड़ के चला रहे हैं, मैं बाबा के साथ चल रहा हूँ, बाबा मेरी बैकबोन है, मैं वरदानों की छत्र छाया में हूँ, बाबा ही सब कुछ है। तो ये सब संकल्प स्वाहा करने, तो अपने को साकाश देंगे तो ऑटोमेटिकली वो साकाश परिवार में पति को भी पहुंचेगा, बच्चों को भी पहुंचेगा, मित्र संबंधियों को पहुंचेगा। नहीं तो क्या करते हैं, योग में बैठे बैठे मित्र संबंधियों को याद करते रहते, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, इसको साकाश दो, बाबा भूला उसको भूला। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा मेरा योग नहीं लगता। है कोई ऐसा कहने वाला? भट्टी में अगर किसी ने बाबा को कहा कि बाबा मेरा योग नहीं लगता है, तो बाबा क्या कहेंगे? बैठे हैं योग भट्टी में, फिर बाबा क्या कहेंगे? योग नहीं लगता, ऐसे कहेंगे? क्या करते अधिकतर, जो भी मिले उसको कहेंगे तुम कैसे योग लगाते, एक चार्ट तुम दे दो, फिर दूसरे के पास जाएंगे तुम कैसे योग लगाते, उससे चार्ट ले लेंगे, तीसरे के पास जाएंगे, सारे चार्ट जमा करते रहते हैं, फिर उसके बाद न वो पूरा कर सकते न वो। तो हमें तो बाबा और दादियों की बात याद आती है, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरा योग नहीं लगता। साकार बाबा सदा शिव बाबा का कार्य है, शिव बाबा के स्नेह में खोए रहते थे। आज हम दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को देखते हैं, कभी कहेगी योग नहीं लगता? बाबा बाबा करती रहती हैं, बाबा के पास बैठो, बाबा की बात करती रहे, बाबा बाबा करना ही योग लगता। इसलिए ये भी नहीं कहना कि बाबा मेरा तो योग नहीं लगता है, मेरी बुद्धि इधर उधर जाती है। इसकी एक अव्यक्त बाप दादा की कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद फिर आज रात को क्लास तो नहीं है ना इनका, अच्छा एक कहानी सुनाती हूँ। शुरू में अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे ना, तो उस समय शुरू में तो छोटे छोटे ग्रुप होते थे, हर एक को चांस मिलता था, एक एक को 10-10 मिनट 15-15 मिनट मिलता था। फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो ग्रुप्स मिलते थे, फिर उस समय देश विदेश के भी थे, तो विदेश का जब ग्रुप आता था ना, ओम शांति भवन की स्टेज पर उनको बिठाते थे, सारे बाबा के सामने बैठे थे। एक विदेशी बच्चा था, वो वहां से जब अपने देश से निकला तो बोला, इस बार जब मैं बाबा से मिलूंगा ना, मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा, बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो जब बाबा से मिल रहे थे, बाबा ने उसको कहा, सदा योगी, सदा का योगी है, सदा सहज योगी, बाबा ने इसको कहा। तो आसपास वाले सारे हंसने लगे, बाबा ने कहा क्या बात है? तो एक बच्चे ने कहा, बाबा ये कहते मैं प्रश्न पूछूंगा बाबा से, मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा ठीक है ना, क्या करता है? यही तो कहता है, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं कैसे आपको याद करूं, बाबा मेरा योग खत्म हो गया है, बाबा मेरी बुद्धि तो क्या कर रहा है। तो बाबा को ही तो याद करो और क्या कर रहा है, कहे तो यही रहा ना, बाबा मेरा योग नहीं लगता, तो बाकी क्या बोला, बाबा से योग लगा हुआ है ना। तो आप भी ये क्या बोलते हो, बाबा मेरा योग नहीं लगता, सबको बोलेंगे बाबा से योग कैसे, अरे योग तो लगा ही हुआ है ना। तो बाबा ने कहा योग तो लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स गाड़ी चलाना, उल्टी गाड़ी चलाएंगे तो क्या करेंगे, जाकर के टक्कर मारेंगे। थोड़ा टाइम के लिए रिवर्स करना पड़ता है सेफ्टी के लिए। जो उल्टी चलाएगा तो क्या होगा, खुद भी थक जाएगा, प्राप्ति भी नहीं होगी, टक्कर मारेगा, नुकसान कर देगा। तो इसलिए बाबा ने हमको बहुत अच्छा तरीका बताया है, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने लाखों करोड़ों लोगों से मुझे ही चुना है। बाबा कहते मैंने तुमको चुना है, किसी और को चुना है क्या। जब बाबा ने मुझे चुना है तो इससे बढ़ के मेरा भाग्य क्या हो सकता है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, बट्टी में आना बहुत बड़ा भाग्य है, और सौभाग्यशाली आत्मा कौन है वो बताओ, सौभाग्यशाली कौन है, हाथ खड़ा करो, बस एक दो ही है ना, बाकी नहीं है ना। सौभाग्यशाली तब है जब बाबा के साथ अनुभव करें, बाबा के साथ झूला झूलो, बाबा का हाथ पकड़ के चलो, बाबा मेरे साथ है, इससे बढ़ के सौभाग्य क्या होगा। और पद्मा पद्म भाग्यशाली कौन है, सारे ही हैं, दो चार ने फिर भी हाथ नहीं खड़ा, बोलो ना हम भी हैं, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी करो। पद्मा पद्म भाग्यशाली वो हैं जो वरदानों से भरपूर, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर है, जो पद्मा पद्म जिसको बहुत है, पद्मों की कमाई है। तो बाबा ने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, वरदानों से भरपूर किया। तो इस भट्टी में आपको तीन प्रकार के अनुभव होंगे। भाग्यशाली का अनुभव तो पहले ही हो गया, बाबा के बने भाग्यशाली बने, और यहाँ बाबा के साथ भट्टी के अंदर जो अनुभव करेंगे वो होगा सौभाग्य की निशानी। बाबा आपको तिलक भी लगा देंगे, तखत पर भी बिठा देंगे, लेकिन उतरना नहीं। बाबा कहते बच्चों को आदत होती ना, तखत से उतर जाते, जाके इधर हाथ खेलो इधर खेलो, लेकिन भट्टी में तो तखत पर बैठना है, अपना श्रृंगार भी करना। और सौभाग्यशाली आपको ज्ञान रतन वरदान इतने प्राप्त होंगे जितना आप अपने को भरपूर करना चाहें उतना करते जाएंगे। अच्छा, फिर से आपका मधुबन में स्वागत है, बहुत प्यार से रहें। और बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, बाबा कहते थे ये मेरे लाडले बच्चे बहुत आराम से रहे, सब आराम से हैं। अरे बाबा के घर में रहना मिला यही बड़ी बात है, कैसा भी कमरा हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन बाबा की धरनी पर रहना। आज देखो यात्रा करने जाते हैं तो कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, सोमनाथ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, बर्फ पड़ी है, रास्ते बंद हैं, क्या क्या होता है उस समय, होता है ना। इसलिए, और दूसरी बात, भट्टी की शुरुआत में आप सबको क्या खाना है, क्या खाना है, टोली बोलते ही नहीं, टोली खानी है कि नहीं, हाँ हाँ जी बोलो, हाँ जी, ठीक है ना। और बताओ टोली की कहानी। बाबा के पास बच्चे आते थे ना, कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होते थे, बच्चे आए बाबा से मिले, साकार में बाबा की भी बात है, प्यारी दादी की भी बात है, दादी खड़ी होती थी, सब आते थे, मैं याद है कैसे आते थे, फिर वो दादी उनसे मिलती थी, बाद में आएंगे कहेंगे अभी हमको दादी से मिलना है, अरे अभी तो मिले दादी से क्यों मिलना है, तो टोली कहाँ खाई हमने, टोली खाना मीन्स मिलना। तो कहते बाबा ने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि लाडले बच्चे आते हैं, बाबा बच्चों का मुख मीठा कराते हैं, उनको टोली खिलाते हैं। वो सिस्टम जो प्यारे बाबा ने बनाया वो अभी तक चला ही आ रहा है। तो इसलिए आप सभी को मुख मीठा कराया जाएगा, भट्टी की शुरुआत में आप सबको टोली दी जाएगी। और टोली हम कैसे देंगे मैं आपको सिर्फ बता दूंगी, फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, सिर्फ दो मिनट बता देती। टोली के लिए पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, वो यहाँ से टोल 10-10 भाई खड़े होंगे, सारे नहीं, आराम से, जल्दी तो नहीं है ना, कोई कुछ और कारोबार नहीं है ना, इसलिए आराम से रिलैक्स रहना है, सब डिटैच हैं, इसलिए धीरे धीरे आने का, टोली लेकर के पहले भाई जाएंगे भोजन पर, फिर बहनों को बुलाएंगे, फिर आप भी भोजन करने जाएंगे, और रात को तो वैसे भी कोई क्लास नहीं है, चाहे तो अपन आधा घंटा योग रख लो जैसा भी, क्योंकि बरसात में कहाँ बैठेंगे, 9:15 रख दो आधा घंटा, क्योंकि बाहर
योग,
क्योंकि बाहर बरसात में कहाँ खड़े रहेंगे, तो इसलिए 9:15 से या 9:30 से 15 मिनट भी करके जाए, है ना, बाबा की गुड नाइट करके जाएंगे ना, तो बाबा याद रहेगा, रात को बाबा के साथ सोएंगे, सपनों में भी बाबा, क्योंकि बाहर बरसात में इधर आप करना चाहें तो फिर आधा मिनट रख देती है, पूछ लो,
रखे योग रखे रखे हाँ। ना तो 9:30 से 10 रखे, 10:15 तो हो गए हैं,
9:30 से 10 या 10 में 5 मिनट पहले भी कर देना,
10 में 5 मिनट पहले,
10 मिनट पहले, 15-20 मिनट योग करके जाने का ना। कल का सुना दे, हाँ दिनचर्या, हाँ अभी आपको, हाँ हाँ कल का सुना दो, हाँ
बाकी क्लासेस का तो कल सुनेंगे सुबह मुरली क्लास के पश्चात, लेकिन कल जो हम दिन को एक टाइटल देते हैं, जो आपको अनुभव करना है, आत्म अनुभूति दिवस, कल का जो दिन है वो है आत्म अनुभूति दिवस, वैसे तो करते ही हैं लेकिन कल विशेष, ठीक है, आत्म अनुभूति दिवस, और स्वमान है मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। बाकी सारा दिन का जो आपकी दिनचर्या 3 दिन में रहेगी, मैं एक बार सुना देती हूँ, और फिर इसको कागज को हम बाहर बोर्ड पे भी लगा देंगे, तो आपको रेफर करना हो तो कर सकेंगे। सुबह 4 से 5 अमृत वेला योग रहेगा, यहाँ ही मेडिटेशन हॉल में रहेगा, फिर 6:30 से 7 योग क्लास मुरली क्लास के पहले वो ओम शांति भवन में, और 7 से 8 मुरली क्लास वो भी ओम शांति भवन में, फिर 8 से 9 आपका जलपान नाश्ता, और 9 बजे से 10 बजे तक 4 धामों की यात्रा। तो जैसे अनुभूति करते हुए सुनाया ना दोनों दीदियों ने, तो उस तरह से करना है। 10 से 10:30 बजे तक यहाँ ही संगठित योग रहेगा, और योग में जो विशेष स्वमान लेना है, जो अनुभव करना है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, उसके पश्चात 10:30 से 11:30 क्लास होगा, फिर 11:30 से 12:15 ब्रेक रहेगा, 5 मिनट इधर उधर किसी को उठना करना हो, 12:15 से 1 फिर क्लास रहेगा, 1 से 4 आपका भोजन और विश्राम, 4 से 4:30 चाय, 4:30 से 5 बजे तक फिर 4 धाम की यात्रा, यहाँ है तो अभ्यास कर सकते हैं, 5 से 5:30 यहाँ ही मेडिटेशन हॉल में संगठित योग रहेगा, 5:30 से 6:30 फिर क्लास होगा, 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित योग रहेगा, नुमा शाम का विशेष योग, और फिर उसके पश्चात फिर आप 7:30 से 8:30 बजे तक डिनर के लिए जाएंगे, भोजन के लिए, 9:15 से 10:15 बजे तक रात्रि क्लास होगा, और 9:15 बजे फिर अपनी स्व की चेकिंग, बाबा को गुड नाइट करें और स्व की चेकिंग करना, चार्ट लिखना अपने लिए, मुरली से पॉइंट लेकर के फिर आप उस चार्ट को लिख सकते हैं, तो ये आपकी रोज की दिनचर्या रहेगी, ठीक है, बाकी क्लासेस का हम आपको कल सुनाएंगे। ओम शांति।
है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास जब जब सोचो तेरे बारे में गुणों की सुगंध महकाए तेरे प्यार की किरणें लहराए स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए लगता है सदा लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास लगता है सदा